कृष्ण कहते हैं। ये कौन है, ये कौन है कृष्ण के लिए? सीता जी कह रही हैं राम के लिए, और सीता जी नहीं, वो गांव की स्त्रियां, और उन्होंने अंचल से ओट रख करके देवर के लिए कहा, ये हमारे देवर हैं। बस इसी से बतला दिया। ये अमूष्म, वैसे ही यहाँ पर वो जो नारियां हैं वो गोपियों के लिए कह रही हैं। अमूष्म रूप कृष्ण को यहाँ पर देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? हाथी दांत लिए हुए सभा में बैठ वहां पर आए हैं और चार मुष्टिक उनको पकड़ करके लड़ने के लिए तैयार हैं। उस समय में वो देख रहे हैं अमूष्म रूप, ये इन्हीं का वो रूप इतना अच्छी तरह से अनुराग से पान करते। कहने का ये तात्पर्य है, कृष्ण का रूप पान करने के लिए, उनके गुणों का पान करने के लिए, लीलाओं का पान करने के लिए कुछ हमारे अंदर में होनी चाहिए थी। वो चीज क्या है? श्रद्धा से आरंभ होती है और अंत में महाभाव तक, और महाभाव के ऊपर तक की स्थिति में मादन मोदन तक वो स्थिति जाती है। इसमें श्रद्धा से लेकर के जिन लोगों के अंदर में श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, अधिरूढ़, फिर मोदन, मोहन, तब फिर यहाँ तक जिसका होगा वो उतना ही अधिक क्रमशः कृष्ण के रूप को आस्वादन। इन लोगों में क्या है? अनुराग। इसलिए ये लोग कैसे उस चीज को सामने रहने पर भी कृष्ण को नहीं देख रही है उस रूप में, इसलिए अपने को भी कह रही है हम बड़ी सुविधा। गोपियां जिस रूप में, गोपियों को क्या है? महाभाव। महाभाव का एक लक्षण होता है जावद आश्रय वृत्ति, ससंवेद्य दशा में जावद आश्रय वृत्ति। जावद आश्रय वृत्ति नहीं हुए बिना कृष्ण को इस रूप में कोई नहीं देख। जैसे भक्ति नहीं होने से कृष्ण के प्रति थोड़ा भी अनुराग प्रेम नहीं होगा, उसको नहीं समझ सकते। उसी तरह से जिसको जितना ही श्रद्धा होगा उतना ही भगवत रूप, भगवत भाव और उनकी माधुरी का आस्वादन कर सकता है। तो यहां कह रहे हैं इन लोगों को जीतना है, कितना है श्रद्धा से तो ऊपर उठ करके चली गई। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति से भी ऊपर चली गई। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तक पहुंच गई है। किंतु महाभाव तभी उस स्थिति में भी जावदाश्रय वृत्ति हो रही है। जावदाश्रय वृत्ति का तात्पर्य क्या है? आश्रय और विषय दोनों की चरम स्थिति। कृष्ण में वह आश्रय भाव सीमा तक है और गोपियों में और विशेष करके श्रीमती राधिका जी में आश्रय की वृत्ति की अंतिम चरम सीमा है। उस समय में दोनों के प्रति जो प्रेम होगा वो उसी प्रकार का होगा। कैसा होगा? स्वसंवेद्य दशा। उस समय में कोई व्यक्त नहीं कर, ना वो भी व्यक्त कर सकते, ना वो भी कृष्ण भी और ना वो, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पर ये अपने को बहुत दुखी मानने की, हम उस कृष्ण को देखते हुए भी उस रूप में इसको हमने नौ नवायमान रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं ये चारण मुष्टिक ने इनको पकड़ा है मारने के लिए और कृष्ण बलदेव अपने दांतों से होठों को पकड़ लिया है। बड़ा सुकुमार शरीर है। बलदेव जी पहले कुछ हंस रहे हैं और हंस करके मुष्टिक से भीड़ गए और मुष्टिकाघात करता है और तब रोष में आ जाते हैं और रोष में आकर के ये भी उनसे लड़ जाते हैं। इस समय वीर रस का भाव उनमें आ रहा है। किंतु जो परम सौंदर्य जो वृंदावन में राष्ट्र नृत्य इत्यादि के समय में वो है वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि गोपियों ने कौन सी बड़ी तपस्या की जिससे कृष्ण का वह रूप जो वृंदावन में स्वयं निखर करके आता है उसका नित्य उस अनुसव आसव एक होता, आसव माने मदिरा, रूप रूपी मदुरा का नित्य ये आंखों के प्याले से पान कर रही है उसी के लिए। गौरव अस्त कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? अपने प्रिय व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेष करके स्त्रियों के लिए अपने पति का नाम नहीं, पति भी स्त्री का नाम नहीं देता। बहुत तरह की भाषाओं से इंगित से अरे तरे उहे इत्यादि के द्वारा वो परस्पर को संबोधन करके इस भाव, किंतु उसमें भी प्रेम होता है। इसलिए कहते हैं लावण्य सार, लावण्य सार असंबोध, लावण्य का सार, लावण्य किसको कहते हैं? यदि खूब गोरा व्यक्ति भी हो लावण्य नहीं रहने पर वो ठीक नहीं जचेगा, पानी होना चाहिए लावण्य, जैसे मूंगे मोती में लावण्य होता है भीतर से झलकता है, ऐसे ही उज्जवलता को बनाने वाला लावण्य होना चाहिए। काला व्यक्ति भी परम सुंदर हो सकता है, कृष्ण ही है, और गोरा रूप भी खूब हो उसमें लावण्य नहीं है तो वो सुंदर नहीं होगा। इसको पॉलिश समझिए, कोई भी चीज है ना पॉलिश नहीं रहे तो सुंदर चीज नहीं जाती, और कोई भी चीज हो और पॉलिश कर देने पर सुंदर जाती है, ये लावण्य उसको कहते हैं। लावण्य भीतरी भीतरी सौंदर्य को भी बाहर में प्रकाश कर देता है। सर्व विलक्षण समस्त अवतारों में भी कृष्ण में चार है चीजें, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेद माधुरी। कृष्ण राम निसिंह कल्कि वामन एक ही तत्व है, तत्व में कोई अंतर नहीं, केवल एक दो तीन चार पांच छह तिथियों का केवल अंतर है दर्शन में, एंगल ऑफ विजन है। तृतीया का चांद पूर्णिमा का चांद जो अलग नहीं है एक ही है, किंतु दृष्टा के दृष्टिकोण से इनमें अंतर हुआ करता है। आज कितनी तिथि होगी? द्वादशी, द्वादश कालाय चंद्रतीर्थ, किंतु एक ऐसा भी स्थान होगा जहां पर हम यदि एरोप्लेन से ऊंचे जाएं तो वहां से चंद्रमा में पूर्ण ही दिखाई देगा, आज भी पूर्णिमा दिख पड़ेगी। उसी तरह से भगवत तत्व में सभी पूर्ण है, कृष्ण चंद्र वंश में है ना इसलिए 16 कलाओं में पूर्ण है, और रामचंद्र द्वादश कलाओं में ही पूर्ण है क्योंकि सूर्य की द्वादश कलाएं, इसलिए इसमें अंतर नहीं है। कुछ लीलाओं के तारतम्य में से, शक्ति के प्रकाश के तारतम्य में से, रस की दृष्टि से कुछ विशेषता उन लोगों में होती है। इसलिए जगत पर जीवों पर कृपा करने के लिए कोई मर्यादा, कोई प्रेम, कोई कुछ प्रकाश करते हैं, इसलिए कहते हैं। किंतु कृष्ण सर्व विलक्षण है, इसीलिए बतलाया गया एक ही चांद कला पुंसा कृष्ण। तो ऐसे मनोहर को ये गोपियां पान करती हैं, ये कह रही हैं मथुरा की युवतियां रसना अमृत का पान करती है, रसना माने जीवा, और इसमें सब समय रस निर्भर होता है, भरता रहता है। यहाँ पर ये नैनों से पान कर रही हैं, आसक्ति के सहित साक्षात देख रही हैं, ये भी साक्षात देख रही हैं, किंतु देखने में प्रेम नहीं है ना अनुराग, इसलिए वो आनंद इनको नहीं है। इस प्रकार लावण्य के सार, लावण्य तो है ही है, दूध का सार मक्खन, और मक्खन का सार घी, घी का सार क्या, घी का सार क्या होगा? आग में दे दो, हवन कर दो और उसकी सुगंध निकलेगी ना, वो जगत को पवित्र कर दे। अब उसका सार क्या, उसका सार ले लिया या तो भगवान ही उसके भी सार, क्योंकि उसमें भी भगवान है। सबका सार सब कार का कारण वहां तक पहुंचा दो। तो सबका सार कृष्ण है, भगवान है। तो इस प्रकार से जितना लावण्य है, लावण्य समूह का आश्रय ये कृष्ण है, इसलिए इनके समान या इनके बराबर विश्व में और कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए असमोद बतलाया। असमोद और क्या शब्द असम्य अतिशय, न साम्य और अतिशय भी नहीं पीछे। और भी कह रहे हैं और अवतारों में भी इस चीज को प्रकाश नहीं किया। अवतार लोग अपने अपने स्वरूप के अनुसार में जगत की स्थिति के वजह से साधनों ऊपर में कृपा करने के लिए अपनी उतना ही शक्ति का प्रकाश करते हैं जितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवत तत्व वो एक ही है अखंड। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि और कहीं भी ऐसा रूप नहीं प्रकाशित होता, इसलिए पराकाष्ठा, रूप की पराकाष्ठा, बिना भूषणम भूषणांगम, कोई चीज जगत में कोई खूब सुंदर व्यक्ति न भी हो तो हल्दी इत्यादि के द्वारा स्नान कराकर सुंदर आभूषणों के द्वारा और वस्त्रों के द्वारा किसी को सजा देते हैं तो वो सुंदर हो जाता है, इसको कहते हैं वर। कोई अभिनय के लिए अपने को सजा करके पाउडर इत्यादि लगा करके खूब सुंदर बन जाते हैं और फिर जब उतर करके स्टेज से आएंगे या दिन में देखेंगे तो देखेंगे जो कुछ नहीं, कृष्ण का रूप ऐसा नहीं है, आभूषणों के द्वारा नहीं, वस्त्रों के द्वारा नहीं, बल्कि जिस रूप में रहेंगे, यदि नंगे रहेंगे तो और भी सुंदर, यदि वस्त्र पहन लिया तो और भी सुंदर, आभूषण धारण कर लिया तो भूषण ही बड़े सुंदर लगे। इसलिए अनन्य सिद्धम, भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। इसी प्रकार से उद्धव जी ने कहा है तृतीय स्कंद में, भीष्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। कब उद्धव जी कह रहे हैं, कब द्वारका से कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर लौट करके आए तब विदुर को कह रहे हैं, कह रहे हैं जो हमारा सौभाग्य लूट गया, कृष्ण अब नहीं रहे इस जगत में। इसी के समय में वो कह रहे हैं कृष्ण का रूप कैसा था, कृष्ण कौन थे, हम लोगों ने नहीं पहचाना, जदु वंशी लोग नहीं समझ सके ये वो कौन थे, हम लोगों ने उनका आदर नहीं इस समय में किया। उसी के लिए कहते हैं ये सुंदर कैसे थे, भीष्मात्मनम स्व स्वस्य, स्वस्थ मैंने अपने को भी, अपना भी रूप देखा दर्पण में या जल प्रतिबिंब में देखा, और उनको भी विस्मय हो गया तो दूसरों का क्या विस्मय। सौभगर्दे परम पदम भूषणम भूषणांग, सौभगर्दे मैंने जगत के लिए सौभाग्य का दिया, विशेष करके भौम लीला में जो लोग साधक इस जगत में हैं या शुद्ध लोग जो आए हैं जो कृष्ण को देख रहे हैं उनके लिए अनुकूल है वो, जोग माया बलम दर्शिता दर्शिता गृहितम भीष्मापनम स्वस्थस्य परम पदम भूषण, ये जगत के लोगों के लिए साधन के अनुकूल है। ये कैसे, चित्त जा रहा है इधर उधर विक्षिप्त होकर, जोर से भगवान का नाम करो, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त लाख उपाय करो नहीं। यहां तक की बतलाया है, विक्रीडितम ब्रजुवत हुई दंत विष्णु श्रद्धान्वितो श्रृणी आतत परणीत ज भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्धताम हृदय रोग माशु अपहिमत अचिरेण धीरा धीरा, धीर के लिए कह रहे हैं, इसके लिए काम को, हृदय रोग को, सबसे बड़ा भयंकर रोग क्या है, काम रोग, माया इसी के द्वारा जगत को बांध करके रखी है। इसे पार पाने वाले लोग, यहाँ तक कि हम लोगों के जगत गुरु, वैष्णवों के मूल गुरु नारद जी भी धोखा खा गए इस काम में। नारद जी के पिता स्वयं ब्रह्मा जी धोखा खा गए, शिव जी मोहिनी रूप में धोखा खा गए। ये काम रूप है, सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, किंतु इसके हाथ से उद्धार पाना बड़ा भारी कठिन है। कैसे जाएगा? जो सबसे बड़ी तेज औषधि है उसके द्वारा। वो तेज औषधि क्या है? कृष्ण की सर्वोत्तम लीलाओं का श्रवण और चिंतन स्मरण करने से भगवत प्रेम हृदय में उद्दीप होगा। उस प्रेम के द्वारा काम अपने आप दूर होगा। काम को दूर करके और तब हम भगवान का भजन करके भगवान प्रेम लाभ करेंगे, ये गलत है। चित्त को स्थिर कर लेंगे पहले। चित्त वायु से भी अधिक चंचल है, अब उसको हम मन को एकाग्र कर लेंगे और हमारे अंदर में जो दुर्वासना है, संसार की भोग की लालसा है, काम क्रोध लोभ मद भोग मद सब ये है। वैष्णव अपराध बड़ा भयंकर, नम अपराध बड़ा भयंकर, इन सबसे पार पाना साधकों के लिए, दुर्बल साधकों के लिए विशेष करके बड़ा कठिन है, संभव। ये कैसे होगा? तो कहते हैं शास्त्र लो, भगवान के लीलाओं का चिंतन करो, नाम कीर्तन करो, उसे जो तुम्हारे हृदय में भक्ति आएगी, प्रेमा भक्ति आएगी, प्रेमा भक्ति जितने परिमाण में आती जाएगी, मन संयमित हो जाएगा, स्थिर होगा और काम रोग भी दूर हो जाएगा। पहले प्रेम होगा तब फिर उसके प्रभाव से योग, ये सहज से ये सब काम इत्यादि को क्रोध को जीतने का उपाय सहज रूप में भगवान की लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा हो जाएगा, जो और किसी चीज के द्वारा नहीं। रोग जितना कठिन होगा दवा भी उतनी तेज होनी चाहिए ने? और नहीं तो रोग बढ़ता गया और औषधि वही रही तो इसलिए इसको कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं भीष्मापनम स्वस्य। कृष्ण अपने रूप को देखकर के अपने भी मुग्ध हो जाते हैं और सौभगर्दे ये लीलाएं कैसी हैं, मत्त जीव में जो साधक हैं, सिद्ध हैं, जो भी हैं, सबके लिए अनुकूल है। क्या है? तो करें कैसे? जो कि विषयी है, विमुख है, वो भगवान की लीला कथाओं को सुन करके, नाम करके क्या होंगे? उन्मुख होंगे। जो उन्मुख हैं वो साधन परायण होंगे। जो साधन परायण हैं वो भक्ति भाव भक्ति में आएंगे। जो भाव भक्ति वाले हैं प्रेमा भक्ति में, जो प्रेमा भक्ति में जब आ गए तो वो उनमें कुछ कषाय रहता है, उसको भी ये कुछ करना करके नित्य लीला में प्रवेश कराएंगे। ऐसी ये लीलाएं हैं। और परम पदम भूषणम भूषणांगम, यही भगवान का लीला, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का धाम, ये सब भगवान के परम पद हैं। अथवा उपयोगी ये लीलाएं, ब्रज की ये जो लीलाएं हैं ये मत्त जीवों के लिए उपयोगी हैं, लीलोपयोगी हैं, ये उपयोगी हैं। किस लिए? सहजी रूप में इनका श्रवण करके, बिना साधन के ही श्रवण करता हुआ भी परीक्षित महाराज की तरफ में गोलोक वृंदावन में चला जाता है। तुलसीदास जी ने भी बतलाया है ये संशय रूपी विहंग को उड़ाने वाली है। संशय को भी दूर कर देंगे, जैसे कि गरुड़ जी का संशय दूर कर दिया है और कागभूषुंडी जी का भी, दोनों का संशय दूर कर दिया है। और साथ साथ में प्रेम को संचार करने वाली है ये कथाएं। कोई साधन मत करो, लीला कथाएं का श्रवण करो। इसलिए सतांग प्रसंगम विपने ज्ञाने प्रयास उत्पाष्य नमन दैव जीवंती सन्मुखरितांग। ज्ञान का प्रयास छोड़ो, भगवान का तत्व ज्ञान तब हम जान लेंगे, ये कोई नहीं जान सकता। क्या करो, भगवान की स्थान की स्थिति में रहकर, स्थान में रह करके भगवान की लीला कथाओं का श्रद्धा के साथ में पान करते रहो, वही सब कुछ करा देगी। इसलिए कृष्ण भी अपने रूप को देकर के मोहित हो जाते हैं और उनकी इच्छा होती है। राधिका जी जैसे हमारे रूप का आस्वादन करती हैं, गुणों का आस्वादन करती हैं, हम भी अपने गुणों का और रूपों का आस्वादन कर सकूं। राधिकेव कते, इतना होने पर भी गोपियों को कभी भी कृष्ण को देख करके, उनका रूप आस्वादन करके कभी भी अरुचि और अतृप्ति नहीं होती। अलम बस यही तक और नहीं, चलो हम लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है, बस चलो फल आरती हो गई, बस चलो हरी कथा सुन ली, अब चलो बस सब जिसमें बस रहेगा, तृप्ति हो जाए, खा लिया कुछ, खाते खाते तृप्ति हो, पानी पी रहे हैं एक ग्लास पी लिया, दो ग्लास पी लिया आप जरूरत। किंतु गोपियों को कृष्ण के रूप से उनकी कथाओं को सुनकर के कभी भी अतृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती है, सब समय अतृप्ति बनी रहती है। माघ काव्य में भी ऐसा वर्णन किया गया है, जो रूप श्री क्षण क्षण में निरंतर नवता को प्राप्त होती है, नव नव ऐमान होता रहता है, वही आस्वादन योग्य होता है और वही रूप रमणीय होता है। दुरापा, दुरापा माने गोपियों के छोड़ करके, उनके भावों को छोड़ करके ये कभी भी रूप किसी को न तो दर्शनीय है और न तो कोई आस्वादनीय है, कोई साक्षात अनुभव नहीं कर, जैसे ये देख रही हैं, देख करके मुग्ध भी हुई हैं, कुछ हद तक आस्वादन भी करी, किंतु गोपियों जैसा नहीं। एक शेर है, उसको सर्कस में दिखलाने के लिए सर्कस पार्टी में उसको पिंजरे में बंद करके रख दिया गया, दुबला पतला और पिंजरे में बंद है, उसको देखो और बच्चे जाकर के चिढ़ाएंगे उसे, पिंजरे में ऐसा ऐसा करेंगे, और जंगल में वो जब रहेगा ना, सुंदर वन में बंगाल टाइगर, और उस समय में कोई जाकर के देखे तो यदि वहां गर्जन करेगा दो माइल से आदमी का हृदय कांपने लग जाएगा, और कितना तेजी उसमें फुर्ती होती है, सुनते हैं कि 24 हाथ है ऐसे ही कूद जाता है ऊपर या लंबाई, कितना बलवान होता है। हाथी को भी एक ऊपर में पहुंच जाएगा सिर पर, और हाथी का यहाँ पर उसका रस का आस्वादन करना बहुत अच्छा वो मानता है, इसलिए इसी पर आगे आक्रमण कर बड़ा भयंकर हो जाएगा। तो उस समय का देखना और इस समय का देखने में अंतर है। जब कृष्ण वृंदावन में ब्रज में सखाओं के साथ में गोचारण करते हुए सखियों से परिवेष्टित होकर के देख रहे हैं, कैसे बरहा बरहा ये नहीं किशोर हमको याद नहीं आ रहा, वो सब कितने सुंदर सुंदर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस्तले कौस्तुभम नाशाग्रे भरमौक्तिकम करतले बेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदम सुललितम कंठे च मुक्तावरी गोपी श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल। ये फुल्लेंदी वरकांत बिंदु बदनम बरहा वसंतम प्रियम श्री वत्सांक मुदार कौस्तुभ धरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नांग नैनोत्पलार्पितम गोपोपसंधावितम गोविंदम कलबेनुवादन परम दिव्यांगम। कितना सुंदर रूप, गोपियां अर्चन कर रही हैं, प्रदीप नहीं आंखों के प्रदीप से उनका अर्चन कर रहे हैं। ये सब वहां का रूप, और ये मथुरा में कंस से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उस समय में इनका रूप। एतद्वारा मथुरा की जो नगरियां हैं, करें कि आज हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे रूप को हम देख रहे हैं, हम वृंदावन में नहीं, गोपियों के नेत्रों से इनको नहीं देखा। कितना बजा? 6:40। इसलिए गोपियां, वो राजकुमारियां या मथुरा की नागरियां अफसोस कर रही, यदि देखा तो वृंदावन में क्यों नहीं, उन्होंने कौन सी तपस्या की, उसी तपस्या को हम कर करके वृंदावन में जाकर के कृष्ण के इस मधुर रूप का हम लोग आगे नहीं कर रहे।
Thank you. करते हैं।